نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روح القرآن آج پارا نمبر 22 ومن يقنط اس کو شروع کریں گے یہ پارا سورة الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے اور 73 یعنی سورت کے اینڈ تک چلیں گے پھر اسی پارے میں سورت سبا ہوگی سورت فاتر ہوگی اور اسی کے ساتھ پارا پورا ہوگا کچھ چیزیں جو بہت ہی اہم ہیں وہ آج اس پارے میں ہم پڑھنے والے ہیں بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہیں آئیے ذرا سا اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آئے 31 اور 32 اعلیٰ مقام بڑی ذمہ داری ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکلیں ہیں سوا یعنی انسان جتنا بڑے لیول پہ جاتا جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کے لیے اتنا ہی زیادہ محتاط ہونا لازمی ہے وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قنوت کا اظہار کرے گی یعنی جو دل کی خوشی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور دوام کے ساتھ نیکی کرے گی لفظ قنوت وہی ہے جو دعائے قنوت میں بھی ہے قانتا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں عاجزی اور ہمشگی اصل میں خطاب ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ناطے ہر اس عورت اور ان خواتین سے جن کو اللہ تعالیٰ کسی بھی معاشرے میں عزت دے دیتا ہے ان کا ایک اچھا تعارف ہو جاتا ہے لوگ ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اور اس دور میں تو اللہ کے نبی کی ازواج ساری امت کی مائیں تھیں ہی آج بھی ہم میں سے ہر ایک جس کو اللہ اپنے دین کے لیے چن لے جس کا ٹائٹل جس کا تعارف دین بن جائے تو اس کے لیے جہاں درجے بہت بڑے ہیں اللہ نے اس کو ایک کام کے لیے چنا لیکن وہاں اس کی آزمائش بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ اس کو بہت ساری ایسی باتیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں جس کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر لیں گی جو صرف اجازت کے درجے کا ہے لیکن دوسرے لوگ ان کو دیکھتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے اس کام کو لازمی کریں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو جو کام ماں باپ کریں بہت ہی کم ہوتا ہے کہ بچے پھر وہ کام نہ کریں استادوں کا بڑا مقام ہے کسی بھی معاشرے میں وہ چاہے کچھ بھی پڑھا رہے ہوں استاد کی غلطی بعض دفعہ شاگردوں کی عادت بن جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دلت عالم ایک عالم کی بھول پورے جہان کی بھول ہو جاتی ہے تو یہاں اس میں جو آپ کے میرے لیے عمل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو محتاط رکھیں پھر اس میں عورت کا مرد سے بات کرنا کیا مطلقاً منع ہے کیا مرد عورت کی آواز نہیں سن سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک بالکل غیر فطری بات ہے عورت اور مرد ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹریکشن نہ ہو صحابیات کا اللہ کے نبی سے بات کرنا بھی ثابت ہے اور یہ ناممکن ہے گھر میں تو کچھ محرم ہے کچھ غیر محرم ہے اور اگر آواز ہی نہیں سننی تو پھر کیا ہوگا دن میں کئی بار آپ کو اپنی ضروریات کے تحت کبھی ڈرائیور کو بلانا پڑتا ہے کبھی کچھ لیکن جو چیز منع ہے وہ کیا ہے فلا تحدان بالقول بات کو نرم لہجے میں لچک کر دل پھیک سٹائل میں نہ کرو کیونکہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض کہیں وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ تم سے کوئی امید نہ لگا لے وقلنا قولا معروفا اور معروف بات کیا کرو حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت اپنے مزاج میں وقار رکھے نگاہ میں حیا ہو جھکاؤ ہو بات کرے تو بالکل سٹریٹ کول و قولا سدیدہ تو مرد کو جرت ہی نہیں ہوتی اگر مرد برائی کرتا ہے تو عورت اس کی اجازت دیتی ہے کسی حد تک تو لہٰذا یہاں کچھ باتیں خواتین سے متعلق ہے جس میں سے اب آگے آئے 33 میں ٹاپک کیا ہے آرائش زیبائش اور نمائش تین چیزیں ہیں آرائش جائز ہے زیبائش بھی جائز ہے ہاں لیکن نمائش ناجائز ہے وہ کیسے ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن اور گھروں میں قرار پکڑی رہو اور دور جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرو और नमाज़ें कायम करो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की बात दिल की खुशी से मान लो। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाह, इसके सिवा और कुछ नहीं कि अल्लाह इरादा करता है कि तुम से गंदगी को दूर कर दे ए घर वालों, और तुमको पाक करे, बहुत पाक करना। अगर देखें तो अज़वाज मुतहरात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास वसीयत थी, जब क़यामत तक के लिए हर मुसलमान माँ बहन और बेटी के लिए एक गाइडलाइन है। क्या कुछ है इसमें? नंबर एक, बग़ैर हाजत के बाहर निकलने की ममानियत है, और औरतों के लिए इनके घर बेहतर हैं। हाँ, ज़रूरत के तहत बाहर निकलने की इजाज़त है। फिर इसी तरह से अगली चीज़ अगर आप साथ ही देख लें तो तालीम के लिए घर से निकलने की इजाज़त है। फिर इसी तरह जो चीज़ मना है वो क्या है कि औरत अपना सिंगार जाहिर ना करती फिरे, तो लिहाजा औरत का जेब व जीनत के बग़ैर निकलना, इसकी भी इजाज़त है। बेमौका तबरुज की ममानियत है। अल्लाह के नबी की एक हदीस पढ़कर फिर हम थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। यह सिलसिला तो सहीहा की एक तवील रिवायत है, जिसको अगर पीछे से थोड़ा सा छोड़कर अपने मौजू से मुतल्लिक पढ़ा जाए तो वो क्या है। आपने फरमाया कि तुम्हारी बदतरीन औरतें वो हैं जो जेब व जीनत इख्तियार करने वाली और तकबर करने वाली हों, यही औरतें मुनाफिक हैं। अब आप देखिए कि कुछ लोगों को ये सारे अहकाम बोझल लगते हैं। पहली बात है कि अगर आपने सिर्फ आज ही सुनना शुरू किया है तो आप पीछे से सूरत अल आराफ भी सुनिए। उसमें पहली दफ़ा ख्वातीन के नाम के बगैर लिबास की बात हुई, लेकिन इशारे उसमें यही थे। लिबास का मकसद क्या है? नंबर एक, क्या है वो? तुम्हारे जिस्म के काबिले शर्म हिस्सों को छुपाता है। हर इंसान के जिस्म पे ऐब होते हैं, कमी होती है। ये तो कुछ पहन कुछ ना पहन कर इसको नुमाया कर दें, वरना एक नेकेड बॉडी और एक जानवर और गाय भैंस के जिस्म में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो लिबास का मकसद यह है कि जिस्म के अंदर अल्लाह ने ज़रूरतन जो चीज़ें रखी हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, जिसमें इंसान अपनी अगली नस्ल की पैदाइश का ज़रिया बनता है, और इसी तरह अपने जिस्म से वो गंदगियाँ जो अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर रखी हैं उसको बाहर निकालने का काम लेता है। तो चूँकि ये काम बड़ा सीक्रेट है, इसलिए जिस्म को छुपा दो। अल्लाह ने आंखें मुंह पे लगा दी, चेहरे पे लगा दी, कान लगा दिए, जुबान अंदर रख दी। आज जाकर ज़रा सोचिएगा, सिर्फ आप एक ह्यूमन बॉडी की जो डिफरेंट प्लेसेस जिस जिस जगह पे रखी है ना, तो आप हैरान हो जाएंगे। एक किताब है, बल्कि मैंने उस पर कुछ लेक्चर्स भी दिए थे, कि इंसानी जिस्म अल्लाह की अदालत में। तो जिस्म के हर हर उज़ आँख जुबान कान, आप देखेंगे कि इसका एक ख़ास मुकाम है। तो लिबास का मकसद यह है कि इंसान की इज्जत हो। जानवर कपड़े नहीं पहनते, गाय भैंस बकरी को आपने कपड़े पहने नहीं देखे होंगे, तो उसके बरक्स इंसान को कपड़े पहनाकर इज्जत दी गई, जानवरों से अलग किया गया। अब आप देखिए कि जिस्म के ऊपर जब कपड़े पहन लिए जाते हैं तो वो एक खाल के ऊपर एक दूसरी खाल नहीं होती, उसको आप लिबास नहीं कहेंगे। उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, वसाफ ना हो और शफाफ ना हो, यानी जिस्म के कर्व्स दिखाने वाला ना हो, इतना टाइट ना हो और इतना स्ट्रेची ना हो कि कौन कैसा है वो पहनने के बावजूद भी ना छुपे। और दूसरी बात यह है कि सी थ्रू ना हो। इसके अलावा दूसरा वह जीना, जीनत की बात थी, खूबसूरत हो सकता है, और इससे कोई इनकार नहीं करता। सारी इंडस्ट्री देख लीजिए इसी पे चल रही है, फैशन डिज़ाइनिंग इसी पे चल रही है, ब्रांड्स इसी पे चल रहे हैं। मर्दों का पैसा पानी की तरह बहता है, औरतों की मसरूफियत का 80% हिस्सा सिर्फ जीना पे है। खूबसूरत रंग, कपड़े, मोती, सितारे, कोई हर्ज की बात नहीं है। घर की औरतों के बीच में या अपनी फ्रेंड्स के सर्कल में एक औरत क्या पहनेगी, उसका तذکرہ हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़े तो सूरत नूर आ गई। उसमें घर के अंदर रहते हुए जो गैर महरम लोग हैं उनके साथ हदबंदी बता दी गई, किसके सामने कितना एक्सपोज होगा। फिर महरम जो होते हैं रिश्ते, उनमें भी फ़र्क है। जैसे बाप के सामने एक लिहाज और हयादारी होगी, भाई के सामने औरत उस तरह नहीं आएगी जैसे शौहर के सामने आ सकती है। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद अब यहाँ बाहर की दुनिया में एक औरत कैसे निकलेगी? आप देखिए कि अब यहाँ इस चीज़ पे भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि जी औरत घर में क्यों रहे, तो आप क्या चाहते हैं कहाँ रहे, बाजार में रहे। आप देखिए कि मर्द एक दिन घर में रहे तो खुद भी परेशान होता है और माजरत के साथ करता भी है, क्रैंकी हो जाते हैं मर्द। कोरोना का वक्त याद कीजिए, कितनी तलाकें हुई, कितने घर टूट गए। मर्द की फितरत है कि उसको बाहर जाकर सुकून मिलता है, गर्मी है, थकन है। और इसके बरक्स आप देखिए कि खुदा ना खास्ता किसी ऐसी ज़रूरत के तहत आपको बाजार जाना पड़ जाए और हों भी रोज़े, तो सर में दर्द लेकर आती है। अगर इतनी कशिश ना होती ना शॉपिंग में और चीज़ें खरीदने में, तो मेरा नहीं ख्याल कभी भी कोई औरत बाहर जाती। तो फिर ये बात क्या है, इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। हमारे घर में हर चीज़ की एक जगह होती है ना। मैं मिसाल देती हूँ और आप सोचिएगा कि ये चीज़ कहाँ होगी। यानी डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम में होगा, कुशन सोफे पे होना चाहिए, बेडरूम सेट किधर बिछेगा, बेड पे बिछेगा ना, इस रंग बर्तन। अब हर चीज़ के साथ कोई एक जगह आई ना। बर्तन किचन में होते हैं, डाइनिंग टेबल डाइनिंग चेयर्स डाइनिंग रूम में होती हैं, कुशंस और तकिए और पिलोस बेड पे होते हैं। लेकिन क्या यहाँ से चीज़ें कभी हटी नहीं? हटती हैं, तभी तो खाते हैं पीते हैं उठाते हैं। बर्तन खराब हुए गंदे हुए धोए, जूं ही सफाई करते हैं बाद में क्या करते हैं, चीज़ों को उनकी जगह पे रख देते हैं। जब चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएं तो हम क्या कहते हैं, घर साफ हो गया। बस ये है, औरत की असल जगह घर है, लेकिन ज़रूरतन इधर उधर जाएगी फिर वापस। यानी औरत का दायरा कार घर में है। और इसमें तो अल्लाह ताला ने औरत को तसल्ली भी दी है कि तुम्हारे कंधों पे अल्लाह ने कोई ऐसा बोझ नहीं डाला कि तुम मर्दों की तरह कमाओ, क्योंकि मर्द उसके कवाम है। बहरहाल इस मौजू पे अगर आप सुनना चाहें, ये सूरत के एंड पे भी आ रही है बात अभी आगे, और आप एक लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं जिसमें पूरे लिबास के मकासद और सारी चीज़ों को एक लेक्चर में समअप किया गया है। और इस पर एक बुक भी है पढ़ी हुई, तफहीमु सुन्ना सीरीज़ की, लिबास का बयान, यूट्यूब पे भी होगी यकीनन और बाकी जगहों पे। आप उससे फ़ायदा उठाएं, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको यकीन आ जाएगा कि इस्लाम आपको अच्छे कपड़े पहनने से नहीं रोकता। लेकिन तीन लफ्ज़ अभी हमने सुने हैं, आराइश जायज़ है, कपड़े अच्छे हैं अच्छा स्टफ़ है, ज़िबाइश के उस पर मोती लगा लिए उस पर लेस लगा ली ये भी जायज़ है, मेकअप कर लिया चले ये भी जायज़ है, मना क्या है नुमाइश। और वहाँ नुमाइश करना कि जहाँ फितने का डर हो, औरत औरतों में अच्छा कपड़ा पहन ले अच्छे अच्छे हाल में देख ले, चले खुश नहीं भी होंगी कुछ ना कुछ तो होगा। हमारा ख्याल होता है कि लोग हमें देख के खुश हो रहे हैं, वो तो तकाबुल कर रहे होते हैं मेरे पास क्यों नहीं, तो दूसरों को जलाने के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसी जगह पे एक औरत अपने हुस्न का इजहार करे कि जहाँ से जज्बात भड़कें और गुनाह की तरफ दिल जाए, तो ये तो बहुत बड़ी सरकशी है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो औरत का काम पढ़ना लिखना भी है। आयत 34, वस्कुर नमायुतला फी बुयुतिकुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना भी कुरान नाजिल होता था, फिर वो घर में अपनी अजवाज के साथ उसको शेयर करते थे। यहाँ ख़ास तौर पर उन छोटे छोटे हुजरों की बात की गई है। और आज आपके मेरे तो माशाल्लाह बड़े बड़े घर हैं, विलास भी हैं लोगों के और शातोस भी हैं, और अल्लाह की रहमतों से बड़े बड़े घर हैं। आपके मेरे घर के अंदर अल्लाह की किताब की आयतों का तذकरा होना चाहिए, और हिकमत की बात भी है हदीस भी है इसमें, चूंकि सारे मुअन्नस के सीगे हैं। अगर आप देख रहे हैं वस्कुर, नाम में नून मुअन्नस का है, फिर बुयूती कुन्ना है, तो इससे पता चलता है कि औरत को भी, बल्कि औरत को तो ज़्यादा पढ़ने लिखने की ज़रूरत है। आज कभी कभी कुछ ब्रदर्स परेशान होने लगते हैं जब उनकी बीवियाँ या उनकी बहनें या माएँ किसी कोर्स में दाखिला ले लेती हैं, कुछ पढ़ने लगती हैं, तो कहते हैं आप किधर चली। एक औरत ने ऐसी ही बात की कि आप कहाँ जा रही हैं, आपका तो काम है बच्चे पालिए। तो बड़ी परेशान थी कि मियाँ ने पाबंदी लगानी है, ये है वो है, मैं कोर्स कैसे करूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि बहुत अच्छी बात तो कह रहे हैं वो आपको, आप बस एक बात उनको कह दें, जी यही सीखने जा रही हूँ। हकीकत है कि औरत की गोद में बच्चा पलता है, और आज का बच्चा कल का बाप है। जो औरत इल्म से दूर होती है ना, वो कोख बांझ हो जाती है। अफसोस के साथ कहने की इजाज़त दीजिए कि अक्सर लोग गिला करते हैं कि आज के बच्चे अच्छे नहीं हैं, आज की नस्ल बहुत ज़्यादा फरमा बरदार नहीं है। मेरा नज़रिया थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है कि आज के बच्चे से ज़्यादा औरत का कसूर है, मर्द का कसूर है, यानी आज के बच्चों को अच्छे माँ बाप नहीं मिले। इल्ला माशाल्लाह, आप जैसे अच्छे लोग तो हैं, लेकिन अमूमियत पे देखिए कि हम बच्चों के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल होते हैं। जो माएँ पढ़ने के लिए आती हैं, बैठती हैं इधर उधर, बच्चे साथ, उनमें सब्र आ जाता है। आप खुद इसकी दलील हैं। जो बच्चे आपके साथ ही पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं उन बच्चों से जो कि इसके बगैर है। बाप के साथ मस्जिद जाएगा बच्चा, शुरू में थोड़ा बहुत जाके वहाँ शरारत करेगा, टोपी उठा लेगा ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आता है। तो बहरहाल, ये पढ़ने लिखने का काम कोई मामूली काम नहीं है, ये अम्बिया का विरसा है। उसके बाद मर्दों और औरतों के लिए 10 पसंदीदा औसाफ, बाद में फारिग बैठकर आयत 35 में से खुद भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा, तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। आइडियल पर्सनैलिटी, इस्लाम कैसे लोगों को देखना पसंद करता है, यानी मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, फिर मोमिनीन वल मोमिनात, फिर कानितीन वल कानितात, जो हमेशा काम करें और मुस्तकिल करें और आजजी से भी करें। ये नहीं कि रमज़ान में तो खूब नेक और 20 नहीं 25 नहीं, बल्कि पूरी पूरी रात की इबादत है और आम दिनों में फ़र्ज़ भी ना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सच बोलने वाले और सच बोलने वालियाँ, सादिकीन और सादिकात, फिर साबिरीन और साबिरात। अब दोनों को अलग अलग करने की क्या ज़रूरत थी, बताने के लिए कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि मर्दों के साथ औरतों का तज़किरा भी लाजमी है। फिर ख़ाशीन और ख़ाशियात, खुशू दिल का झुकाव, मुतसद्दिकीन अवल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, फिर साइमीन अवल साइमात, रोज़ा रखने वालियाँ और वाले, और फिर अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और करने वालियाँ, और वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और औरतें। ये 10 खूबियाँ जिसमें आ गईं, अअद्दल्लाहुल्लहुम मग़फिरतन व अजरन अजीमा, तैयार किया अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ा अजर। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी खूबियों से मुत्तसिफ़ कर दे। फिर आगे है जी आयत नंबर 36, हकीकी मोमिन और हकीकी मोमिना का तर्ज़ अमल क्या होता है, कि जब कभी अल्लाह और उसका रसूल उनके लिए किसी बात को चूज़ कर लें, तो फिर उसके बाद वो उसमें नो नहीं कह सकते, यानी जिस चीज़ का हुक्म अल्लाह रसूल के थ्रू मिल गया, आप वो उसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, व मैं यासिल्लाह व रसूलहू फ़क़द दल्ला दलालम मुबीना। असल में इसमें आगे वाले वाक़े की तरफ इशारा है, जिसका तस्करा आगे हम देखने लगे हैं। आयत 37 से 39, मुंह बोले बेटे की बीवी बहू नहीं है। अरबों का रिवाज क्या था कि मुंह बोले बेटे की बीवी को बिल्कुल बहू की तरह समझते थे, और ये वही चीज़ है जो आज हमारे भी है। उम्र के फ़र्क के साथ गैर महरमों के साथ बेतकल्लुफ़ी है। मसलन एक मर्द जो खुद भी 40, 50, 60 में, तो अब उसके दोस्त की बेटी, दोस्त की बहू क्या कहने लगते हैं, बेटा, बिटिया, अब्बा, अंकल, आंटी। अच्छे लफ्ज़ हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन गैर महरम और महरम का फ़र्क तो रहेगा। तो अल्लाह के नबी के ज़िंदगी में एक ऐसी आजमाइश इस आयत के अंदर दिख रही है कि जिसके अंदर आपको डाले बगैर ये कानून टूटना भी नहीं था। हज़रत ज़ैद जो आपके मुंह बोले बेटे थे, उनका निकाह आपकी फूफीजाद बहन से, यानी आपने प्रपोज़ किया था कि अच्छी खातून है और ज़ैद भी अच्छे बंदे हैं, तो उनका निकाह किया था, लेकिन चली नहीं बात। क्योंकि देखिए, निकाह ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती दे दें। एक सूट है, किसी ने आपको दिया नहीं, पसंद आया, फिर भी आप कहते हैं इट्स ओके, अच्छा तो है, चलो मौसम के मुताबिक है, चले अगले की खुशी। लेकिन खाने का एक लुकमा आपको कोई दे जो आपने कभी ना खाया हो, तो मेरा ख्याल है कि इंसान उसको मुंह में नहीं डालता। हकीकी सी बात है, कुछ चीज़ों में आप दूसरे की बात मान लेते हैं, कुछ में नहीं। बिल्कुल शौहर और बीवी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, गुरबत भी है, दोस्ती भी है, और एक दूसरे के साथ वक्त भी बहुत गुजरता है। तो हज़रत ज़ैनब के दिल में था कि ज़ैद चूँकि एक ग़ुलाम है, तो मेरा इनसे देह नहीं मिल रहा। पूरी कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। अल्लाह ने इन आयात की वही के ज़रिए से अल्लाह के नबी को ये बता दिया कि ज़ैद जब ज़ैनब को तलाक़ देंगे, तो फिर आपका निकाह उनसे होगा। और ये ऐसी ही बात है जैसे आज के दौर में खुदा न खास्ता कोई सुसर अपनी बहू से निकाह कर ले जबकि बेटा उसको तलाक दे चुका। मुआशरे में शोर उठना था, रिएक्शन, बातें, वही बादशाह यकूलु सुफहा वाली बात। कि अन करीब कुछ बेवकूफ़ लोग बातें करेंगे, क्योंकि ज़रा सी कोई माशरे में चेंज आती है तो एकदम कीलो काल शुरू हो जाती है। तो आप इस बात पे खौफजदा थे, लेकिन अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इम्तिहान में डाला। फिर जैद का निकाह ख़त्म हुआ।